फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की जो 48वीं मीटिंग अभी हुई थी हाल में, उससे संबंधित जो नोटिफिकेशन थे वो जारी किए जा चुके हैं। तो वो जो नोटिफिकेशंस हैं उनमें क्या क्या है, उससे संबंधित सर्कुलर्स भी आ गए हैं, सर्कुलर भी कई सारे जारी किए गए हैं। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे जीएसटी के जो नोटिफिकेशन आए उसके बारे में। तो ये है आपका जो नोटिफिकेशन नंबर 26/2022। तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है जिसके संबंध में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कब से एप्लीकेबल हो रहा, 26 दिसंबर 2022 से। अब इसमें दिया इन्होंने जो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के संबंध में है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अभी क्या होता था कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दिया जाता था और उसी पर ओटीपी आता था, और एक सिस्टम था आधार ऑथेंटिकेशन का जो कि ईकेवाईसी आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से किया जाता था। अब इसमें इन्होंने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि पैन नंबर बेस कर दिया, यानी कि अब जो है जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे तो उसमें एक कठिनाई होने वाली है, और वो ये है कि अब जो भी ओटीपी जाएगा वो जाएगा पैन से, यानी पैन में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी होगी उसी पर वो ओटीपी भेजे जाएंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे फ्रॉड केसेस हो रहे थे जिसकी वजह से सरकार इस तरह का अमेंडमेंट लाने जा रही है। तो ये था आधार और पैन से रिलेटेड। अब आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। अ पर्सन हु हैज अंडरगॉन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4A ऑफ रूल 8 इज आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे जो आधार नंबर के माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन अब जो भेजने का तरीका है वो बदल जाएगा। अब वो पैन पे जो भी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होगी उसी पर भेजा जाएगा। तो ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो चेंज आ रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे साथ एक प्रॉब्लम थी कि अभी तक हम लोग क्या करते थे कि अगर जो भी हमने सप्लाई ली है और उसका पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करते थे तो उसमें क्या पोजीशन आती थी कि आपको पूरा का पूरा आईटीसी का रिवर्सल करना होता था। तो यहाँ पर इन्होंने इसमें चेंज कर दिया है, इन द सेड रूल इन रूल 37 इन सब रूल 1 विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2022। ये एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2022 से, और इसमें इन्होंने चेंज कर दिया आफ्टर द वर्ड्स वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। अभी तक क्या था, वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, द वर्ड्स वेदर होली और पार्सली सेल बी इंसर्टेड। वहाँ पर क्या जोड़ दिया इन्होंने, होली और पार्सली, यानी जो भी हमने सप्लाई की है उस सप्लाई में से या तो पूरा का पूरा पैसा आया हो या पार्ट में आया हो। तो अगर पार्ट में आया है तो आपको पार्ट में ही रिवर्सल करना है, और अगर पूरा पैसा नहीं आया तो पूरा रिवर्सल करना है। पहले क्या था कि पूरा ही पूरा आपको रिवर्सल करना होता था, तो अब आपको पूरा का पूरा रिवर्सल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने पेमेंट पार्ट में कर दिया है, तो रिवर्सल भी आपको पार्ट में ही करना होगा। इसके बाद इन्होंने एक ऐड किया 37A, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाई द सप्लायर एंड री अवेलमेंट देयर ऑफ। तो यहाँ पर क्या है, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न फ्रॉम GSTR 3B। यानी अभी तक आप क्या कर रहे थे, GSTR 3B में आपने ITC अवेल कर ली, लेकिन सामने वाले ने अपना GSTR 1 फाइल नहीं किया या GSTR 3B फाइल नहीं किया। तो अगर उसने अपना 30 सितंबर तक रिटर्न नहीं फाइल किया, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक अगर उसने फाइल नहीं किया है और अब जो डेट एक्सटेंड होकर के आ गई है 30 नवंबर तब तक भी फाइल नहीं किया है, तो वो ITC आपको रिवर्स करनी होगी विद इंटरेस्ट। मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। जो सामने वाली पार्टी यानी सप्लायर जो है हमारा, उसने अगर अपना GSTR 1 या 3B 30 सितंबर तक पहले की स्थिति में, आज की स्थिति में 30 नवंबर तक अगर अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उस जो ITC आपने क्लेम कर ली है उसको आपको विद इंटरेस्ट रिवर्सल करना होगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेड अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स इज नॉट रिवर्स बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन अ रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B ऑन और बिफोर द 30th ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड सच अमाउंट शैल बी पेबल बाय द सेट पर्सन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट दे आर ऑन अंडर सेक्शन 50। यानी सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा. प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द सेट सप्लायर सब्सिक्वेंटली फर्निशेज द रिटर्न फ्रॉम GST 3B फॉर द सेट टैक्स पीरियड, द सेट रजिस्टर्ड पर्सन में री अवेल द अमाउंट ऑफ सच क्रेडिट इन द रिटर्न फ्रॉम GST 3B फॉर ए टैक्स पीरियड देयर आफ्टर. अब जब वो उस अमाउंट को अपने रिटर्न को फाइल कर देगा, तो उस रिटर्न को फाइल करने के बाद आप उस ITC को रीअवेल कर पाएंगे. इन द सेट रूल इन 46 इन क्लास F द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड नेमली. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है कि उसमें जो ये देने जा रहे हैं कि लोकल एरिया में आप कर सकते हैं, तो रिसीपिएंट का एड्रेस क्या होगा, तो रिसीपिएंट का एड्रेस वही माना जाएगा जो उसके बिल में दिया जाएगा पिन कोड के सहित. तो उसी पिन कोड से उसके स्टेट का नाम और एड्रेस को कन्फर्म मान लिया जाएगा, यानी डीम्ड एड्रेस वही रिसीपिएंट का हो जाएगा. इसके अलावा इन्होंने जो बिल के लिए है उसके लिए कर दिया इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई रूल 46 और रूल 54 एंड रूल 49 के हिसाब से. इसके बाद इन द सेट रूल इन 59 इन सब रूल 6 आफ्टर क्लास सी द फॉलोइंग क्लास शैल बी इंसर्टेड नेमली. तो यहाँ पर इन्होंने रूल 88C में जो इंसर्ट किया है वो किया है फॉर्म GST R1 के संबंध में कि सब्सिक्वेंट पीरियड का अगर आपका बाकी है, कोई रिटर्न आपने फाइल नहीं किया है या उसका टैक्स पेबल है, उस कंडीशन में आगे का आप GST R1 या IFF नहीं कर पाएंगे. इसके बाद इन्होंने चालान आइडेंटिफिकेशन के नंबर के संबंध में दिया है जो पोर्टल पर आएगा तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से इसको देखा जाए. इन द सेट रूल 88B द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड नेमली 88C manner of the dealing with reference in liability reported in statement about supplies and reported in return. तो इनका कहना ये है कि अगर हमारा रिटर्न में सप्लाई में कुछ डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को हमें पे करना है, और उसको पे करने के लिए एक नया फॉर्म लेकर के आने वाले हैं जिसका पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST DRC 01B, यानी DRC 01B फॉर्म लाएंगे जिसका पार्ट ए होगा और ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा. तो इसमें हमें क्या करना और कैसे रिप्लाई करना है थोड़ा सा जो इसमें दिया है वो देख लेते हैं. पे द डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 थ्रू फॉर्म GST DRC 03 और एक्सप्लेन द एफोर्ट्स एंड डिफरेंस इन टैक्स पेबल ऑन द कॉमन पोर्टल. तो DRC 01B में आपको बताना है कि जो डिफरेंस है वो हमने पे कर दिया है DRC 03 के माध्यम से, और अगर नहीं पे किया है तो उस डिफरेंस के संबंध में एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा, और इसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन के अंदर आपको इसका रिप्लाई सबमिट करना होगा. द रजिस्टर्ड पर्सन रेफर टू सब रूल 1 सेल अपॉन रिसीपिएंट द इंटीमेशन रेफर टू इन सब रूल आइदर पे द अमाउंट ऑफ द डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी एज स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST DRC 01B फुल्ली और पार्सली, जैसा भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 थ्रू फॉर्म GST DRC 03 एंड फर्निश द डिटेल्स देयर ऑफ इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST DRC 01B इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल, जैसा कि मैंने पहले आपको क्लियर किया. तो आपको वहां पर जमा करना है या उसका रिप्लाई सबमिट करना है. अब यहाँ पर जो आपका बच जाएगा उसके लिए उन्होंने क्या किया, नो एक्सप्लेनेशन और रीजन इज फर्निश बाय द रजिस्टर्ड पर्सन. अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता या रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इसका रिप्लाई सबमिट नहीं किया जाता तो ये होगा रिकवरेबल इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 के हिसाब से आपसे वसूल किया जाएगा. इसके साथ साथ इन्होंने फॉर्म GST APL 02 APL 01 यानी अपील के चीज़ों में भी चेंज किया है, उसके भी फॉर्म इन्होंने चेंज किए हैं, उसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ा सा समरी में ले रहे हैं. 109C विड्रॉल ऑफ अपील, अभी तक अपील विड्रॉल करने का कोई फॉर्म नहीं था, उसके संबंध में इन्होंने चेंज किया और उसका फॉर्म दिया है. इसके अलावा REG 01 में जहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो हम देते थे उस पर OTP आता था, उसके लिए आपको पता है कि अब जो है पैन नंबर बेस हो जाएगा. इसके अलावा इन सेट रूल फॉर्म GST REG 19 द फॉलोइंग फॉर्म शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली, तो उसके लिए ये फॉर्म इन्होंने कर दिया है. ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अभी तक जो ई कॉमर्स ऑपरेटर थे उनको कैंसिलेशन का वो नहीं आता था, उसके लिए इन्होंने फॉर्म अलग से दे दिया है. अब फॉर्म GSTR 1 में जो ये चेंज करने जा रहे हैं वो चेंज करने जा रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए भी GSTR 3B में इन्होंने पहले से चेंज कर रखा था, उसमें कालम अलग से दे दिए थे, GSTR 1 में वो कालम उपलब्ध नहीं थे, तो वो भी GSTR 1 में ये कालम सब दे दिए गए, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो Under Section 9 Subsection 5 में जो चेंज हुआ था 3B में था लेकिन GSTR 1 में नहीं था, वो इन्होंने आकर के यहाँ पर इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने रिफंड टाइप, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो रिफंड की एप्लीकेशन थी वो कोई फॉर्म नहीं था, वो भी यहाँ पर इन्होंने फॉर्म इंसर्ट कर दिया है, इसके माध्यम से ये कर सकते हैं। APL फॉर्म मैंने बताई दिया, विड्रॉल फॉर्म ये इस तरह से आ गया है। इसी तरह से DRC 01B का जो फॉर्म था वो भी यहाँ पर ये देखिए इन्होंने दे दिया, कैसे इसका पार्ट बी भी दे दिया है, तो पार्ट ए पार्ट बी आपको जो भरना है वो यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा GST DRC 03 के फॉर्म में भी थोड़ा सा ये चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज करके भी ये फॉर्म आपको अवेलेबल हो गया है। इसके अलावा जो आपका नोटिफिकेशन नंबर 27 है जिसमें कि इन्होंने दिया कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन GST रजिस्ट्रेशन में होना है वो केवल और केवल गुजरात के लिए, बाकी जगह अभी फेज मैनर में लागू किया जाएगा। तो अभी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो आधार का होना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो केवल और केवल गुजरात के लिए, बाकी स्टेट्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें मैंने ब्रीफ में आपको बता दी हैं, आगे मैं इसी को और डिटेल में आगे वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो डिटेल वीडियो अलग अलग बनाए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे सर्कुलर्स भी आए हैं जिसको भी मैं बहुत जल्दी अपने वीडियो के माध्यम से अपलोड करूँगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।